मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का बनाया हुआ मधुबन एक ऐसा स्थान है जहां बाबा के छोटे से परिवार के बच्चे आपस में मिलते हैं। वैसे तो ये परिवार छोटा सा है क्योंकि इसमें दो ही रिश्ते हैं, माता पिता, भाई और बहन। ज्यादा लंबे चौड़े रिश्ते इसमें नहीं है, उस रिश्ते के हिसाब से छोटा है लेकिन है बेहद का। तो बेहद के परिवार को मिलने के लिए आपस में बेहद का स्थान चाहिए। हम नहीं समझते कि सारी दुनिया में कोई ऐसा स्थान होगा जहां किसी लौकिक तो किसी भी परिवार का, दुनिया में बड़े से बड़े परिवार का आपस में स्नेह मिलन होता हो तो इतने बड़े हॉल में होता हो जिसका नाम डायमंड हॉल हो। मैं नहीं समझता ऐसा कोई दुनिया में स्थान होगा। तो बेहद के परिवार का स्नेह मिलन यहाँ ही होता है और हमें सबको यहाँ आकर बहुत खुशी होती है कि बेहद के परिवार के बच्चे बेहद के हॉल में मिल रहे हैं। और जब भी किसी परिवार का मिलन होता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है उसमें जो नए ऐड होते हैं, है ना। लौकिक में भी जो नए ऐड होते हैं तो परिवार के संगठन में कहते हैं देखो ये हमारे नए बच्चे आए हैं, चाहे वो ग्रैंड चिल्ड्रन हो या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो। तो बाबा भी हमसे हमेशा पूछते हैं इस संगठन में नए कौन कौन आए, कितने आए। तो आधे से ज्यादा नए होते हैं तो बाबा उनका स्पेशल वेलकम करते हैं। तो हम भी आपसे सबसे पहले यही पूछ रहे हैं कि इस बारी के संगठन में जो स्पेशल संगठन है नया साल शुरू होने से पहले का, इसमें जो बाबा के बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो अपना दायां हाथ उठाइए, जो पहली बार आए हैं। तो मेरा ख्याल है अब के भी वही रेशो चल रहा है, शायद 50% तो हैं ही, उससे ऊपर हो तो कह नहीं सकते। तो सारे परिवार आपको यहाँ 5000 साल वर्ष के बाद, यूं तो हम पहली बार कहते हैं लेकिन 5000 वर्ष के बाद फिर से अपने परिवार में अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आने के लिए आपको बहुत 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 मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं। हमारे सारे पुराने बहन भाई जो पहली बार नहीं आए हैं वो पहली बार आने वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और जो पहली बार आए हैं वो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो नयों और पुरानों को आपस में मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तो ये एक ऐसा स्थान है जो सारी दुनिया में विचित्र स्थान है, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं कलयुग में हैं, जो घोर हो गया है और अंत होने वाला है, और हम थोड़ी सी आत्माएं हैं संगम युग पर, जो चढ़ती कला का युग है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलने हैं, है ना। तो हम सच्ची सेलिब्रेशन करने के लिए और अपने बाप दादा जी से आशीर्वाद लेने के लिए और वरदान लेने के लिए सन्मुख आते हैं। अब प्रश्न ये है कि सन्मुख का अर्थ क्या होता है। हम लोग बचपन में एक बात सुना करते थे, अकल बड़ी या भैंस। सबको पता है ना, अकल बड़ी या भैंस। तो कोई बहुत बड़ी भैंस को देख के कहता था भैंस बड़ी है, अकल तो दिखाई नहीं देती। वैसे तो ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये अकल बड़ी या भैंस सारे जीवन में, और यहां तक कि बहुत बड़े पैमाने पर सारे विश्व के लिए भी लागू होती है। आप जानते हैं कि एक था दुर्योधन और एक था अर्जुन। दुर्योधन ने कहा भैंस बड़ी है और अर्जुन ने कहा अकल बड़ी है, ठीक है ना। परमात्मा ने कहा, दोनों परमात्मा के पास चले गए, हम आपके बच्चे हैं। उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ ये सारी सेना है, सारी मेरी रचना है। तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं मांगूंगा, क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं था। तो शिव तो हमेशा कहते तथा अस्तु, मांगो। तो उसने भैंस मांग ली। उसने कहा कि सोचा कि भगवान अकेला क्या करेगा, सारी रचना इतनी बड़ी है तो ये बहुत शक्ति प्रदान करेगी। तो उसने कहा हे पर पिता, मुझे सारी सेना दे दो। उसने कहा तथा अस्तु। अर्जुन खुश हो गया कि अब परमात्मा मेरे साथ है, रचेता मेरे साथ है, तो विजय तो मेरी ही है। इसी तरह से गणेश और उसके भाई कार्तिक की कहानी भी सुनाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि जो सबसे पहले सारे विश्व का चक्कर लगा के आएगा उसको प्राप्ति होगी। तो कार्तिक ने आओ देखा ना तो और चल पड़ा दुनिया का चक्कर लगाने, और गणेश लड्डू खाता रहा। जब देखा कार्तिक आ रहा है वापस, तो उसने शिव जी का चक्कर लगा लिया, कहानी है। तो उसने जीत लिया, क्योंकि उसने रचेता को पकड़ा। उसने कहा अकल बड़ी है, उसने कहा भैंस बड़ी है, ठीक है। अभी द्वापर से क्या हुआ। द्वापर से हम लोग कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तो अकल मारी जाती है, कहते हैं ना। तो जब चींटी की मौत आती है तो क्या करती है, उसके पर निकल आते हैं। चींटी तो उड़ नहीं सकती, वो सोचती मैं भी उड़ूं। तो द्वापर से हम लोगों का क्या हुआ, बुद्धि पलट गई, वाम मार्ग में चले गए। तो हमने भी कहना शुरू कर दिया भैंस बड़ी है। अब देखो शरीर और आत्मा दोनों में क्या चीज मोटी और दिखाई देने वाली है। शरीर इतना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, और शरीर से संबंधित सारी उसकी रचना, पहली तो शरीर और फिर उसकी सारे संबंधी वस्तुएं। तो हमने सोचा आत्मा पता नहीं क्या चीज है, दिखाई तो देती नहीं, ना किसी को दिखी है। तो जो दिखता है A bird in hand is better than two in the bush. जो दिखता है, जिसको कोई शक नहीं, जिसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं, उसको पकड़ो. तो नतीजा क्या हुआ? तो आप देखेंगे कि धीरे 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 यहां पहुंच गए. तो अब बाबा कहते हैं कि दोनों वस्तुओं में से अभी भी, क्योंकि बहुत समय के अभ्यासी हो गए, हमको रोज बिना नागा बाबा की मुरली में पहली लाइनों में ही और बीच में भी बार बार एक ही स्मृति दिलाई जाती है. और वो क्या है कि रूहानी बच्चे, कि हम बाबा के बच्चे भी जो हैं वो आत्मा रूप से हैं, शरीर रूप से हमारे अलग माता पिता हैं. अपने को आत्मा समझकर हम हैं ही आत्मा, फिर भी बाबा को बार बार डेली, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर कहना पड़ता है कि अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करो, या मन मना भाव और शॉर्ट कर लो. तो ये हमारा जो बार बार हमें बाबा कहते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि हम फिर भूल जाते हैं कि सूक्ष्म चीज वैल्यूएबल है और जो स्थूल चीज है जिसका साइज बड़ा है उसकी भेंट में वो कौड़ी है. हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले क्यों खोया. आत्मा है हीरा और शरीर है कौड़ी, परंतु फिर भी हम कौड़ियों का खेल बहुत जन्म से खेलते आए हैं, वही खेलते रहते हैं. मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, इतना मेरा साइज है, ये मेरा शक्ल है, ये मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, आदि 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 लंबी चौड़ी अपनी शरीर की. कोई भैंस कहे ये मेरे कान है, ये मेरे नाक है, ये मेरी पूंछ बहुत अच्छी है, रंग मेरा भूरा है, इस प्रकार से हम करते रहते हैं. तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सार यही है कि हम जो हैं वो अपने को मानेंगे तो पिता भी जो है उससे वो प्राप्ति करेंगे. आज का विषय है साक्षात्कार मूरत बनने की विधि या धारणाएं. तो पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप क्या भैंस का साक्षात्कार कराना चाहते हैं? सोचने की बात है कि क्या आप मोटे रूप का साक्षात्कार कराना चाहते हैं? भक्ति मार्ग में हमने क्या अकलमंदी की? भक्ति मार्ग में हमने शिव का साइज बड़ा कर दिया कि भाई परमात्मा है तो बड़ा होगा ना, तो शिव का साइज बड़ा कर दिया, शालिग्राम का छोटा कर दिया. निराकार रूप में भी हमने साइज को ही देखा, जबकि आप जानते हैं कि दीवार पे लगाने वाली जो घड़ी होती है वॉल क्लॉक, वो साइज में बड़ी होती है लेकिन सस्ती होती है, और जो हाथ में बांधने वाली घड़ी होती है छोटी होती है और उसमें हजारों रुपए की भी हो सकती है, लाखों रुपए की भी हो सकती है. तो ये साइज को देखने की आदत हमारी बाबा कहते हैं खत्म होनी चाहिए. अब हम कह रहे हैं कि हमारा नया साल आने वाला है, बाबा कहेंगे कि नया साल तो दुनिया वालों का, नई दुनिया आने वाली है, उसमें हमारे नए संस्कार और नव जीवन आने वाला है. तो क्या वह 31 तारीख को رات کے 12 بجے شروع ہوگا یا کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، بلکہ شروع ہو گیا، کیا خیال ہے آپ کا؟ جو کہتے ہیں کہ ہر گھڑی ہمارا نیا ورش، نیا جیون، نئے سنسکار، نیا جنم ہے، وہ ذرا دایاں ہاتھ اٹھاؤ، سب گیانی آتمائیں ہیں، بہت اچھا۔ اب آپ دیکھیے کہ نئے جیون کا ارتھ کیا ہے، کہ جب کوئی نیا جیون کس کو کہتے ہیں، جب کوئی ویکتی شریر چھوڑ دے اور نیا شریر لے لے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کا پرانا شریر چھوٹ گیا، اس سے یہ مر گیا اور نیا شریر لے لیا۔ کئی بار بہت زیادہ بیمار ہونے کے یا موت کے منہ سے کوئی بچ جائے، ہوتا ہے نا ایسا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کہتے ہیں مرتے مرتے بچا۔ اچھا، جب کوئی مرتے مرتے بچتا ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تجھے تو نیا جنم مل گیا، اب تو تیرا نیا جیون ہے۔ تو اسی پرکار سے بابا کہتے ہیں کہ برہمن کا ارتھ کیا ہے، جو پرانے جنم سے مر گیا اور نیا روحانی ادھیاتمک جنم بابا نے اس کو دیا، کیونکہ بابا کے ہم جو بچے ہیں وہ شاریرک بچے نہیں ہیں، برہما مکھ ونشاولی ہیں، ٹھیک ہے نا، برہما ماں کے دوارا شیو بابا نے، مات پتا نے ہم کو ایڈاپٹ کیا ہے، تو پرانے سے تو ہم مر گئے۔ اچھا، اب یہ جو نیا جیون ہے اس میں یہ جنم ہمارا روحانی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جسمانی نہیں ہوا۔ اب روحانی جنم میں نے آتما روپ کا جنم، آتما کی جاگرتی کا جنم، آتم سروپ میں رہنے کا جنم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم آتم سروپ میں رہنے کے جنم میں شریر روپ میں چلے گئے غلطی سے، قبرستان میں واپس چلے گئے، ہیں جس کو کہتے بھوت، کہتے کہ نہیں، پاسٹ، پاسٹ کو کہتے بھوت کال، تو پاسٹ میں چلے گئے تو کیا ہو گیا، ہم پھر مر گئے کہ نہیں؟ اچھا، اس لیے بابا کہتے ہیں جیتے جی مرو کا ارتھ ہے پرانی دنیا سے مرو، نہ کہ نئی دنیا سے مر جاؤ، ہے نا، برہمن سے کوئی مر جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، ایسا ہمارا مر جیوا جنم ہے کہ جب آپ باڈی کانشس میں آئے آپ مر گئے، کیونکہ بھینس دیکھنا شروع کر دیا، جب آپ سول کانشس میں آئے آپ زندہ ہو گئے۔ روز مرلی میں یہی آتا ہے کہ یاترا میں بھی جب تک آپ کو اس پار کی سمرتی ہے آپ یاترا پر ہیں، واپس اس پار کی سمرتی آئی آپ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے اس پرانی دنیا سے بے حد کا بدھی کا ویراگ ہو تب ہم اس دنیا کی پورا دھیان رکھیں اور اس میں جانے کے لائق بنیں۔ تو ساکشاتکار مورت بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے من کی سلیٹ پر لکھ لیجئے کہ ہمیں کس چیز کا ساکشاتکار مورت بننا ہے، کون سے سروپ کا ساکشاتکار مورت بننا ہے۔ کیا ہمیں اپنے اس کلجگی شریر کے روپ کا، اس کے سٹیٹس کا، اس کے دھن کا، اس کی سمپتی کا ساکشاتکار سروپ بننا ہے، یا اس میں سے کچھ بھی نہ رہے پھر جو میں ہوں اس کا ساکشاتکار سروپ بننا ہے؟ کسی ویکتی نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنا جیون کا اصلی مولیہ جاننا ہو، اصلی، تو آپ جن چیزوں کو مولیہ کہتے ہو، میں، میری کار، میرا مکان، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرے بچے، اس سب کو ہٹا دو، باڈی کو بھی ہٹا دو، اور پھر دیکھو آپ کا کتنا مولیہ ہے، سیلف ورتھ کتنی ہے میری. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہمیں یہ نشچت کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے کون سے سروپ کا ساکشاتکار مورت بننا چاہتے ہیں. آپ کو اپنے سارے سروپ پتا ہے؟ آج کل باپ دادا ہمیں اپنے سروپوں میں کی ایکسرسائز بھی کروا رہے ہیں, ہے نا. تو آپ سمجھتے ہو کہ ہمارا دیوی دیوتا سروپ سب سے شریشٹ ہے جس کا ہم ساکشاتکار کرائیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو مورتیاں ہماری بھکتی مارگ میں چلی آ رہی ہیں اس میں تو لکشمی نارائن جی کی مورتی ساکشاتکار کرا رہی ہے. اس سروپ کا ساکشاتکار بھی بھکتوں کو ہوتا ہے. جب وہ مندر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا ہر سمے ایک ہی سروپ رہتا ہے, ان کی استھتی بدلتی نہیں ہے. ان کا مسکراتا ہوا چہرہ, ان کے نین, ان کے سب چیز کی تلنا کمل پشپ سے کی جاتی ہے. نیتر کمل, چرن کمل, ہست کمل, مکھ کمل آدی آدی, ارتھات وہ سب چیز سے نیارے, اتی پوتر ہیں, چہرے پر مسکران ہے. یدپی وہ چہرہ بھی کلجگ کے آرٹسٹ نے بنایا ہے, اصلی لکشمی نارائن کا چہرہ تو کلجگ کے آرٹسٹ نہیں بنا سکتے, پھر بھی اتنے سنہی سروپ ہیں, وردانی سروپ ہیں. ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کے شانتی آ جاتی ہے. تو ایسے سروپ کو دیکھ کر مورتی روپ میں بھگت جن ان کا کیرتن کرتے کرتے, ان کی کیرتی گاتے گاتے, ان کی مہما گاتے گاتے خود پرسن ہو جاتے ہیں. وہ گورنمنٹ کی طرح کسی سے ٹیکس نہیں مانگتے, لیکن خود ہی بھگت جن ان کے سنیہ میں وہاں پشپ پھل پھول بھوگ پرساد لے جاتے ہیں, جو خود ہی ان کو واپس مل جاتا ہے. تو کہنے کا بھاو کیا ہوا؟ دیوتا لیتے کچھ نہیں, دیتے ہیں. تو ساکشاتکار مورت بننے کی پہلی کوالیفیکیشن کیا ہو گئی؟ کہ ہمیں دینے والا بننا ہے, لینے والا نہیں بننا. سوریہ سے لوگ گرمی اور روشنی لیتے ہیں, سوریہ کسی سے کچھ نہیں لیتا. سوریہ گرمی اور روشنی لے گا؟ نہیں لے گا. ساگر جل کا سروت ہے, ساگر سے کوئی جل لے بھی جائے, سوریہ ساگر سے جل ایویپوریشن کے دوارا لے لیتا ہے, ساگر واپس نہیں مانگتا. اس کو پتا ہے کہ گھوم پھر کر وہ پانی میرے پاس واپس آ جائے گا, چاہے ہمالے میں جمع کر دو, چاہے ندیوں میں لے جاؤ, آ جائے گا. تو یہ ہے ساکشاتکار مورت کی فرسٹ کوالیفیکیشن کے دیوتا, لینا نہیں. ارتھات اتنا کمپلیٹ, اتنا سمپن, اتنا سمپورن کہ اس کو کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تبھی تو لوگ اس کا ساکشاتکار کرنے جائیں گے, ورنہ وہ جائے گا دوسروں کا ساکشاتکار کرنے لینے کے لیے. اچھا, تو پہلی بات ہے دیوی دیوتا سروپ میں پھر بھی آپ فرسٹ ڈے 111 کے دیوی دیوتا ہیں. اگلے دن کیا ہوگا؟ اگلے دن کیا ہوگا؟ آپ 111 کے رہیں گے یا ذرا سا نیچے آ جائیں گے؟ کیا خیال ہے, نیچے آ جائیں گے؟ ستیو کے ڈے 1 سے گرتی کلا ہے, اور یہ بھی بھینس کی کوالیفیکیشن ہے. حالانکہ دیوی دیوتا کو تو ہم گائے سے سروپ دیں گے کہ جو بھی پرکرتی کے پربھاؤ میں آئے گا, جو اس پرکرتی کے 5 تتووں کے کنیکشن میں آ جائے گا, اس کی نہ تو ٹھہرتی کلا ہو سکتی ہے, نہ چڑھتی کلا ہو سکتی ہے, اس کی گرتی کلا ہو جائے گی. بھلے ہم دیوتائیں بھی پنیہ کشین ہو جائیں گے. اس لیے پہلا اصول یہ ہے, اگر ہم نے ساکشاتکار مورت بننا ہے تو پرکرتی کے پربھاؤ والی کسی چیز کے ساتھ بابا ایسے ہی نہیں کہہ دیتا کہ کنیکشن نہ رکھو, जरा भी अटैचमेंट वस्तुओं से ना रखो व्यक्ति को, क्योंकि उसको पता है कि आप ऊपर जा रहे हैं, वो या तो खड़े हैं या पीछे की सीट रहे हैं। आप अपने आप को उनके साथ बांधोगे तो आपकी क्या गति होगी सोचो। इसलिए उससे डिस्कनेक्ट हो रही है। केवल एक ही ऐसी शक्ति है जो समय के प्रभाव में नहीं आती, जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आती, उसमें ऐसी ताकत है जब तक कि वो प्रकृति के साथ कनेक्ट ना हो जाए। है जैसे लकड़ी को लोहे के साथ बांध दो तो लकड़ी भी डूब जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि साक्षात्कार मूर्त लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां बनती हैं, लेकिन चैतन्य में लक्ष्मी नारायण साक्षात्कार मूर्त नहीं बनते। ना उनको उनके वहां किसी को जरूरत है साक्षात करने की, ना उनको करवाने की। समय का प्रभाव ऐसा है तो फिर कौन सा स्वरूप हो। फिर दूसरी बात और भी है, लक्ष्मी का फीमेल स्वरूप है, नारायण जी का मेल स्वरूप है, आप आत्मा है, आप कौन से स्वरूप में साक्षात्कार मूर्त बनोगे, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो कहीं भी पहुंच सकता है, लक्ष्मी नारायण का फिजिकल स्वरूप जहां होगा, जिस समय के भी अधीन होगा, स्थान के भी अधीन होगा। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त क्यों हुए, हम रोज गाते हैं कि बच्चों को फरिश्ता बनाने को बाबा अव्यक्त हो गए, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्वरूप जो किसी को साक्षात्कार कहीं भी करवा सके, ये भी होना चाहिए ना। इसलिए फरिश्ता स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है, समय थोड़ा है मैं उसके वर्णन में नहीं जाता, फरिश्ता स्वरूप ही एक ऐसा स्वरूप है जिससे आपको साक्षात स्वरूप बनना है। फरिश्ता कभी भी मेल फीमेल नहीं होता, फरिश्ता ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट स्वरूप होता है। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं होते, फरिश्ता कहीं भी पहुंच सकता है। और फरिश्ता आत्मा के सूक्ष्म शरीर रूप का नाम है, आत्मा बिंदु रूप है। अगर बिंदु का साक्षात्कार होने लग जाए तो किसी को पता भी नहीं लगेगा, हालांकि इतनी पावरफुल चीज है। हम खुद भी जब आत्म स्वरूप में बीज रूप में बैठते हैं तो कितनी देर बैठ सकते हैं, टिकाना पड़ता है, सिमरन करना पड़ता है, मैं आत्मा हूं, मैं सूक्ष्म बिंदु स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं परम धाम का निवासी हूं, याद कराना पड़ता, अपना घर भी याद कराना पड़ता, अपना स्वरूप भी याद करना पड़ता, अपने गुण भी। तो अपना स्वरूप भी हमें खास तौर पे स्मृति में लाना पड़ता है। तो दूसरे को आप बिंदु का क्या साक्षात्कार कराएंगे, उसको पता ही नहीं लगेगा कौन सा बिंदु है। शिव बाबा भी बिंदु स्वरूप है। इसलिए हमें वो रूप धारण करना है पहले, तभी हम साक्षात्कार स्वरूप बन सकेंगे। तो इस सारे सृष्टि चक्र में परम धाम को छोड़ दो, वहां तो हलचल भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है, और साक्षात स्वरूप वाला वाणी से नहीं बोलता है। साक्षात रूप वाला बोलता है, साक्षात वाले से आप बातचीत कर सकते हैं, वाइब्रेशन भी ले सकते हैं, शक्ति भी ले सकते हैं, परंतु साइलेंस में। तो वो मूवी वर्ल्ड का वासी है ना, तो टॉकी वर्ल्ड का वासी है ना साइलेंस वर्ल्ड का वासी है, है मूवी वर्ल्ड का वासी, लेकिन मूवी वर्ल्ड में जाके साक्षात्कार मूर्त हमने नहीं बनना, बनना यहां है। इसलिए इस लोक में रहते हुए, इस लोक में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए, आवाज में रहते हुए, कर्म करते हुए, अगर हम ये अभ्यास करें कि हम धरती पर चलते फिरते फरिश्ते हैं, हम लाइट स्वरूप हैं, हम माइट स्वरूप हैं, हम कर्म बंधनों के बंधन में नहीं हैं, आएंगे आपके कर्म बंधन, कर्म योग से कर्म भोग को उड़ा देने वाले हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, और हमारे वचन, हमारे संकल्प, हमारे कर्म दूसरे को साक्षात लोग क्यों करने जाते हैं कि हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें वरदान मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो हम वह करने वाले बन जाए। अर्थात साक्षात्कार मूरत का जीवन अपने लिए नहीं होता, लेने के लिए नहीं होता, लेन देन के लिए भी नहीं होता, केवल देने के लिए होता है। तब हम साक्षात्कार स्वरूप बनते हैं। एक फल, मान लीजिए आम का फल पेड़ पे लगा हुआ है, तो जब तक वो अपनी परिपक्व अवस्था में आए, अपने रंग रूप खुशबू सुंदरता सबको धारण करे, अर्थात संपूर्ण बने, वो पेड़ के साथ जुड़ा रहता है और उसकी डंडी बहुत सख्त होती है जिसके द्वारा वो पालना लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है, साइज में बढ़ता रहता है, धीरे धीरे अपने असली रूप पे आता रहता है। आखिर वो दिन आता है जब वो पूरा पककर पेड़ के साथ ऐसे टंगा रहता है कि अभी भी उतरा, अभी भी गिरा, अभी भी गिरा। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ऐसी स्थिति में उसको पेड़ से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती, टिका हुआ है, जो लेना था ले चुका। तो हमारा भी क्या स्लोगन है, पाना था जो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम हप कर लेते हो, सागर को चिड़ियों ने हप कर लिया। मैं, मेरा काम ही है अपने सारे शक्तियों गुणों ज्ञान को आप में ट्रांसफर करना, अपनी नॉलेज को, अपने गुणों को, सब कुछ बाबा हमारे में ट्रांसफर करता है। तो जितना जितना हम अपने में ट्रांसफर करा लेते हैं, उसको धारण करके अपना स्वरूप बना लेते हैं, उतना उतना हमारी अवस्था परिपक्व ऑटोमेटिकली होती जाती है, लेने का जरूरत कम होती जाती है, इच्छा मात्रम अविद्या हमारी स्टेज बन जाती है। और उस स्टेज में क्या होता है, जैसे किसी आप गुजर रहे हों और पेड़ों, आम के पेड़ों का बाग हो और आप देख गर्दन जाए तो देखे वाह ये पके हुए आम लगे हुए हैं, आपको कैसा आकर्षित करेंगे। या बाबा कहते हैं कि चंद्रमा जब फुल मून होता है तो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आपे ध्यान जाता है। कोई भी चीज जब परफेक्शन की स्टेज में होती है, बिल्कुल फ्लॉलेस होती है, या बिना जंक के सुई होती है, रस्ट प्रूफ, तो मैग्नेट उसको ऑटोमेटिक खींचता है, बल्कि वो दूसरे को भी खींचने की तैयार हो जाती है। आप देखेंगे कई लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं कि मैग्नेट के साथ एक सुई लगाएंगे, फिर उसके साथ दूसरी सुई लगाएंगे, वो भी उसको पकड़ लेगी, फिर तीसरी पिन वो भी उसको पकड़ लेगी। तो ऐसी शक्ति धारण होती रहती है ना। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि साक्षात्कार मूर्त बनने का दूसरे शब्दों में यही अर्थ है, परफेक्शन को धारण करना, संपूर्ण और संपन्न बनना। तो उस पे अब हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक शब्द में कहें ये संपूर्ण क्या है, संपन्न क्या है, परफेक्शन क्या है, कि देवताओं की मुस्कुराहट जैसे बदलती नहीं है, सुबेरे उठकर अमृत वेले जब आप, जैसे भगत लोग भक्ति करके चंदन लगाते हैं अपने माथे को, शंकराचार्य भी खुद ही टीका लगा लेते हैं तो स्मृति लाते हैं, चंदन का टीका लगा लेते हैं कि आज हमें सारा दिन जो हमारी इस समय प्रफुल्लित और भरपूर अवस्था है उस शाम तक रहनी चाहिए। ये हमारा टेस्ट है। सतयुग में ऐसी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां हम कभी नहीं कह सकते इस परिस्थिति के कारण ऐसे हो गया, रीजन दे करके। ये बुद्धि का काम है कि देखो ना, बात ही ऐसी थी, इसमें तो किसी को भी कुछ हो सकता था, हम भगवान थोड़ी हैं, हैं? तो देह में आ गए, भैंस को देखना शुरू कर दिया। अकल तो ऐसी चीज आप कि कोई इंसल्ट कर रहा है, बॉडी में रहोगे तो इंसल्ट कानों के द्वारा सुनेगी, अंदर जाएगी। आपकी कोई तारीफ कर रहा है, बॉडी में रहोगे, कानों द्वारा जाएगी, आपको नशा चढ़ जाएगा। पर आप आत्मा स्वरूप होकर जादू के जैसे, जादूगर गायब हो जाता है, जादूगर प्रकट हो जाता है। जादूगर कोई भी वस्तु को आपको सामने आउट ऑफ सीजन चीजन को ला के दे सकता है, अपनी टोपी से कपड़े का थान निकाल सकता है, वो तो लौकिक जादूगर है। लेकिन हम क्या हैं? हमारे पास लोक का, परलोक का, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान किस लिए है कि छोटी सी बिंदी में इतना कुछ पैक है, इतना कुछ पैक है। आप जौन सी चीज चाहो आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप भैंस से अलग हो जाओ, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ दो। हमेशा ये याद रखो, अकल भैंस से बड़ी है। मोटे स्वरूप से इन दो आंखों से मत देखो, तब आपकी वो जादू की छड़ी काम करेगी। आप देखोगे कि परिस्थिति के प्रभाव से किसी के चेहरे पर शकुन आ सकता है, भय आ सकता है, हैरानी आ सकती है, प्रश्न चिन्ह आ सकता है। लेकिन आप प्रकृति के प्रभाव से अपने को न्यारा कर लो तो वो दूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि ये शरीर प्राकृतिक नियमों के अंडर चलता है। कोई भी व्यक्ति का शरीर बूढ़े से जवान नहीं हो सकता, डे बाय डे बूढ़ा ही होगा, पुराना ही होगा, लेकिन आत्मा बूढ़े से जवान हो सकती है। तो ऊपर जाने की जो हमारी संगम युग की यात्रा है, ऊपर जाने की जो हमारी चढ़ती कला है, उसकी नैया या उसका प्लेन या उसकी उड़ती कला का आधार बुद्धि नहीं है, मन है। बाबा ने कहा, अंतर मंतर जंतर, अपने अंतर को देखकर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाओ, ताकि आप फटाफट अपनी यात्रा पर पहुंच सको। तो इसलिए हमें हर वक्त यही देखना है कि कितना टाइम मैं इससे आउट रहा। बाबा की शक्ति भी जब भी मिलेगी, और फरिश्ते रूप की यहां रहते हुए परम धाम का अनुभव भी आपको परम धाम में नहीं होगा, यहां रहते हुए होगा। फरिश्ते रूप का अनुभव भी आपको वहां जाके नहीं होने वाला, यहां आपने प्रैक्टिस करना है। तो फिर देखो आपकी जिंदगी में आपको कितना मजा आता है। शाम तक आपकी वही मुस्कुराहट, परिस्थितियां आए और जाए, लेकिन बुद्धि का बंद कर दो। सद्युग में बुद्धि यूज नहीं होती, इसीलिए कि उसकी यूज करने की जरूरत नहीं है। वहां वकालत नहीं चलती, बुद्धि हमेशा वकालत करेगी, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये वो, ना। बुद्धि को बंद कर दो, मन से जीना सीखो। प्रेम मन का सौदा है। अब भगवान कहता है, जो ढाई अक्षर प्रेम के मन मना भव पढ़े सो पंडित होए। तो हम सब क्या करेंगे, बाबा की प्रेम की दुनिया में जाने के लिए प्रेम में ही जिएंगे, प्रेम के सागर में, जिसको लव लीन कहते रहेंगे। ठीक है, अगर सबको मंजूर है तो हाथ उठाओ। वेरी गुड, और एक बार जोर से ताली बजा दो। ओम शांति, ओम शांति।
Oh, Mama. साथी वतन से।